कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुरासा किशोर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जयतां श्रुत पंगल मम मंदम तेजति मत्सरस्वपदाम्भोजौ श्रीराधा मदन मोहदौ नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितम्। नमः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्तकिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणः स्मरः त्वदादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान् मधुसूदनः आशसादसचारूणां मुष्टिकं रोहिणीसुतः श्रीशुक उवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान् मधुसूदनः आशसादसचारूणां मुष्टिकं रोहिणीसुतः चर्चित संकल्पो भगवान् मधुसूदनः आससादासचारूणं मुष्टिकं रोहिणीसुतः श्रीशुक उवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान् मधुसूदनः आससादात् चारूणं मुष्टिकं रोहिणीसुतः श्रीशुक उवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान् मधुसूदनः आससादाथचारूरं मुष्टिकं रोहिणीसुतः
श्रीशुक उवाच चित्तसंकल्पो भगवान मधुसूदनः आससादात चानूरम मुष्टिकं रोहिणी सुत शीशुकावाच एवं चित्त संकल्पो भगवान मधुसूदनः आससादाय नाथ चारुणं मुष्टिकं रोहिणी सुतः श्रीशुक उवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः आससादाथ चारुरं मुष्टिकं रोहिणी सुतः श्रीशुक उवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आससादात चारुरं मुष्टिकं रोहिणी सुत
श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं त्रिभुक्त प्रकार से चारूर की उक्ति के अनुसार चर्चित संकल्प संकल्प को निश्चित करने के लिए भगवान सोच रहे हैं। भगवान कृष्ण मधुसूदन जिन्होंने मधु नामक जयशिकों को बहुत पहले मारा था चारूर के सामने मुष्टिकम और मुष्टिक के सामने रोहिणी सुतः रोहिणी के पुत्र श्री बलराम जी इस प्रकार भगवान ने निश्चित किया कि हमें चारूर का और अन्य पहलवानों का वध करना है। चर्चित का है विचारित या निश्चय। भगवान का संकल्प था कंस का वध करने का और पहलवानों का, क्योंकि वे बलराम जी के साथ से बैठे थे अखाड़ा के पास। चारुओं ने स्वयं ही कुश्ती का प्रस्ताव रखा, ये भी कहा कि हमारे साथ है नंद नंदन लड़ेगा और बलराम के साथ मुष्टी के साथ सिर्फ और बलराम। ये भगवान का संकल्प था लेकिन चारूर के मुख से पूरा हुआ। चर्चित का अर्थ है निश्चित। संकल्प भगवान का था वो निश्चित हो गया, ठीक है युद्ध करना है। तो भगवान अपने सीट से उतर करके उठ करके और अखाड़ा में वहाँ आए जहाँ चारूर था। वो बहुत अभिमान में था। मैं इतने भारी योद्धा को कृष्ण को मार करके बहुत यश कमाऊंगा और राजा का प्रिय करूंगा, इस प्रकार के मग्न था। खड़ा तत्काल फूटता था और पहलवान जैसे करते हैं वैसे हाथ ऊपर कर रहा था। तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर उसके सामने आ गए। आठ सागर, आठ सागर का अर्थ है आठ को पकड़ लिया। सबसे पहले वे एक दूसरे को पंजा को पकड़े, भगवान कृष्ण उसके पंजे को अपनी उंगलियों से पकड़े, वो भी पकड़ा, दोनों हाथों से हस्ताभ्याम हस्तयोग बदला, अभ्याम एवं से पा गए, हाथ से हाथ पकड़ लिए, पंजा से पंजा पकड़ लिए और पैर से पैर फंसाए, पैर से पकड़ना चाहते थे। हस्तयोग हस्ताभ्याम हस्तयोग बदला पद्यान से पादयो बदला, पैर से पैर और हाथ से हाथ, और इसके साथ विचर कर सके, एक दूसरे को खींचने लगा अपने को पकड़ करके खींच रहे थे। ध्यान रखना चाहिए कि श्री भगवान वैसे ही कोमल स्वरूप में है, परम सुंदर, और पहलवानों के साथ जो वर्णन चाणूर और कृष्ण के प्रति होगा उसको समझ लेना चाहिए। मुष्टिक और बलराम जी के साथ भी वही एक जोड़ी के वर्णन से दोनों की कुश्ती को समझना चाहिए। बलराम जी पकड़े मुश्किल को, जब ही कृष्ण आए चाणूर के सामने तो श्री बलराम जी थोड़ी भी देर नहीं तेलुगु उठकर आ गए मुश्किल के सामने। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बलराम जी के लिए रोहिणी सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है श्री कृष्ण की लीला में सहयोग देने के लिए श्री बलराम जी रोहिणी के घर से जन्म लिए। पहले वे माता देवकी के घर में थे, फिर चले गए ये रोहिणी के घर में। भगवान कृष्ण भी यशोदा जी के घर से जन्म लिए और बलराम जी रोहिणी के घर से, वे सब समय कृष्ण की रक्षा करते थे, अक्षय स्नेह का वात्सल्य था, हमेशा रक्षा करते थे। तो इस समय भी कृष्ण के स्नेह से आकर्षित हैं। उन्होंने सोचा यदि कोई खतरा होगा तो मैं मूर्तिमान बल हूँ ही, मैं सहायता करूँगा कृष्ण की, तो मैं भी साथ साथ मुश्किल के पास आ गया। तो हस्ताभ्याम हस्तयो बधवा सभ्याम एवं कृपा दयो, हाथ से हाथ मिला करके और पैर से पैर अपने तरफ दोनों खींच रहे थे। विचक और शत्रु अन्यम प्रसह्य विधि से प्रसह्य बहुत जोर लगा करके तो खींचने लगे। तो कभी कृष्ण को वो चारूर खींच देता था, कभी कृष्ण ही खींच देते थे चारूर। और इसी प्रकार श्री बलराम जी मुस्तिक को मुस्तिक बलराम जी को विधि जी से जेतु इच्छा जीतने की इच्छा से मैं जीत जाऊँ जो प्रभु एक क्षण एक सेकंड में सारे विश्व के योद्धाओं को जीत सकते हैं वो भी अद्भुत लीला कर रहे हैं। इस युद्ध का आस्वादन कर रहे हैं महावीर का रत्नी वे रत्नी ध्यान जानु ध्यान तय ध्यान में सिर सूचना उत्साह होगा अमीर नम अभिजल मे। वे दोनों अंजा से कंजा मिलाए थे और घुटने से घुटना सिर से सिर कृष्ण के सिर से चारूर का सिर लड़ रहा था और वो केवल सताए नहीं थे मारते थे सिर पर वही मारता था। और छाती से छाती उड़ से उड़ छाती से छाती खिलाए अभी जग मते सुबह वो सन करने के लिए एक दूसरे पर चोट करने लगे। उसको जंगल का कल बहाना था वो युद्ध चल रहा था। चारूर मुश्किल के मन में भी था इन दोनों को मारने की और इधर से भी प्लान था कि इनको मारना है। बहाना था कुश्ती होने वाली है जंगल होने वाला है तमाशा लगेगा देखने देखने के लिए राजा बैठा था हंस और भी सरकारी आदमी सब भरे थे बहुत सुंदर स्टेडियम बनाई गई थी जो देवताओं ने बनाया था और देवताओं के सबसे श्रेष्ठ श्रुति श्री विश्वकर्मा जी बनाए थे क्योंकि इस स्टेडियम में भगवान आने वाले हैं। आ गए हैं किसी बोला लाखों लोगों के बीच में भगवान जंगल कर रहे हैं। हम लोग ने अभी जग नहीं अभी तक जग नहीं चारों तरफ जिसको जहाँ गाँव के मिलता था वहाँ मारता था छाती में या सिर में कहीं कोई मोह छोर नहीं था। ये किशोर अवस्था के छोटे छोटे बालक हैं और इधर से भी कोई भय माया नहीं थी। भगवान लड़ रहे थे मार रहे थे परिभ्रमण दीक्षित परिरंभव पाते हैं कभी कभी एक दूसरे को पकड़ करके घुमाते थे हाथ पकड़ करके परिभ्रमण घुमाते थे दीक्षित और कभी दूर झटक देते जोर से झटक देते थे दूर झुक देते कभी बाह में जकड़ लेते परिणाम आलिंगन करते जोर से दबाने के लिए और अवपात में कभी झाँक के पटक देते थे। भगवान ने तो अनंत बल है, लेकिन फिर भी चारू के समान ही बल प्रकाशित किए थे बस। और ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल जोड़ी में जा रहे हैं। लौकिक चादूर है, देखने में भयानक था और ऐसा प्रतीत होता था कि ये तो जीत करेगा। परिभ्रमण विक्षेप परिगंध और अवपात है, इस तरह परस्पर घुमाते थे, झटक देते थे, दूसरे को पकड़ लेते थे और खाकर पटक देते थे। तो सर पर कोई दांत पूरा करके सर्पण करते, फल जाता और कभी कभी पीछे हटता। कृष्ण चारों समस्त या बलराम जी कभी पीछे हट रहे हैं, तो कभी बंधन छुड़ा करके कुछ सर्पण करते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। इस तरह से अपने अपने जोड़ीदार के साथ वो प्रत्यारुंध होता है, दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा था, हराने की कोशिश कर रहा था। उत्थापनाय उन्नयन चालनय स्थापनाय रखना, कभी एक दूसरे योद्धा को कोई परस्पर समझना चाहिए। चारू कृष्ण दोनों लड़ रहे हैं तो कभी चारू कृष्ण को उठा लेता था, उसको उठा लेता तो कभी कृष्ण उसको उठा लेता। उत्थापन उन्नयन काम ले करके हाथ से और कभी कोई जो था गिर जाता था, जमीन में छप जाता था और उत्तर नहीं था, उसको उठा करके उन्नयन है दिखाता था कि उसको उठा करके हाथ पर सत्ता मिल गया। चालन है, कोई नीचे जमीन में चढ़ जाता था, नहीं उठता था, तो उसको छाती के तरफ करने के लिए कोई उठाता था। चालन है स्थापना, और कभी कभी ज्ञान है कि घुसना और हाथ जैसे तैसे बांध करके पिंडी खींच के स्थापित करना चाहिए। स्थापना पहले सब कुश्ती लड़ने में काम करने में एक दूसरे पर बहुत आघात करते थे, हाथ सीधा साधा नहीं मोड़ते, इतना भी जोर लगे हाथ को ममोर करके अपना पर्पस पूरा करना चाहते। इसीलिए अपकृतिदात मना है, सुखदेव भी कहते हैं ये दोनों जो था एक दूसरे के आत्मा को शरीर को अपकृत कर शरीर का अपकार कर रहे थे, शरीर को बिगाड़ देना चाहते थे, नष्ट कर देना चाहते, उठाने में स्थापित करने में चलाने में देह खराब हो रहा था, चालू का कृष्ण का दोनों का। और कुश्ती में बहुत पसीना आने लगा दोनों वीरों को, राजा सामने था, राजा देख रहा था और राज्य की प्रजा देख रही थी, लेकिन ये युद्ध चल रहा था। चारों किस को मारता था, किस उसको मारते विभिन्न प्रकार से कुश्ती हो रही थी, लेकिन कुश्ती के पीछे यही उद्देश्य था, प्रकार यही था, चाहे शरीर कितना भी बर्बाद हो, चाहे टूट जाए हाथ पैर या घाव लगे पेट में घाव लग जाए मर मर स्थान पर छाती पर, वो मारते ही थे। ऊपर सुखदेव जी कहे कि जिंदगी से दोनों जीतने की आशा नहीं थे कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, दूसरे पर दुष्टता से वार कर रहे थे, टमाटर मार रहे थे, कृष्ण भी मारते थे और सरुण भी मारता था, जो गौरांग भी मारते थे, दुष्टिक भी मारता था, जितना हो सके एक दूसरे के शरीर को नुकसान करना चाहते थे। तो उस सभा में मथुरा की स्त्रियाँ जीती थी, कई कुमार स्वभाव की स्त्रियाँ, उन्हें उन्होंने देखा कृष्ण बलराम को इस तरह पहलवानों के साथ युद्ध करते हुए, तो उनके हृदय में बहुत दया आ रही, बहुत स्नेह मरा, ये तो बहुत अनुचित हो रहा है, निर्बल बालकों के साथ बहुत बलवान पहलवानों का युद्ध हो रहा है। यह ठीक नहीं है, तो ये आपस में जहां तहां जीत करके कहने लगे, तद बला बलवत विद्रम सुनेता सर्वजोशता उच्चु परस्परम लागन श्रम कंपा दे। सर्वजोशता सभी स्त्रियों ने देखा ये बला बलवत युद्ध है, ये युद्ध बल अबल का हो रहा है, एक पक्ष बलवान है, दूसरा बड़ा अबल है, कृष्ण बलवान अबल है, बालक और तरुण मुस्तिक बलवान है, तो वे जुट करके दूसरे के पास अपने अपने झुंड की, अपने अपने गांव की, टोला मोहल्ला के आसपास की स्त्रियाँ कहने लगी परस्पर आपस में बातचीत करने लगी। नहा नयन बता घटना कृष्ण दाल से बात कर राजा की सभा में महान अधर्म हो रहा था। ये सब पाप कर रहे हैं, इस युद्ध को देखने के लिए जुटे हैं, परंतु यह युद्ध बलवान और निर्बल में हो रहा है। तुम खेल समान बल वाला नहाना चाहिए, परंतु यहाँ बहुत बलवान और बहुत निर्बल के साथ युद्ध हो रहा है। और आश्चर्य है कि राजा यदि गलती करती है तो राजा से कहा जाता है, लेकिन राजा ही पश्चित राजा स्वयं देख रहा है इस खेल को, इस कुश्ती को, यहाँ अधर्म हो रहा है। क्या अन्याय है तो कहते को वज्र सार सर्वस्व सर्वांगो मल्लो शैलेंद्र समय कौर चाहती सुकुमार रांगो किशोरव नाथ के गौरव। जरा देखो कहाँ वज्र सार के समान कठिन अंग वाले ये पहलवान और अति सुकुमार अंग वाले ये किशोर अभी इनकी जवानी भी नहीं आई है, ये किशोर हैं, ये कमजोर हैं, और इधर पहलवान तरुण मुस्ती ये तो वज्र सार से भी कठोर हैं। वज्र के असली अंश से भी ये कठोर हैं, इनका सब अंग कठोर है, इनका हाथ पैर गर्दन छाती पर बहुत कठोर है। शैलेंद्र सैन्य है, ये लोग मेरु पर्वत के समान बड़े हैं और कठिन हैं। पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ मेरु है, तो शैलेंद्र कहते हैं पर्वत राज मेरु के समान अथवा हिमालय के समान या विंध्य पर्वत के समान। तो कहाँ ये पहलवान कठोर शरीर वाले और कहाँ ये बच्चे विष्णु बलदान। धर्मों व्यक्ति क्रमो जैसे समाज से भ्रम हुए निश्चित है, यहाँ जीते हुए सारे समाज पर सभी लोगों पर धर्म के व्यतिक्रम का दोष लगेगा, यहाँ धर्म की हानि हो रही है। और जिस सभा में अधर्म हो रहा हो वहाँ कभी एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए, अतः सब यहाँ से चलो, हमें देखने लायक नहीं थे, इन अन्याय को नहीं देखेंगे। तो इसी कारण कि माँ सभाम पर सकता है। अगर सभा में अधर्म हो रहा है तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए को सभा में प्रवेश नहीं न करे। यही हमें गलती, सभा में आना नहीं चाहिए। क्योंकि सभासदों के दोष को ये जानेगा तो बुद्धिमान आदमी प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि ब्रुवन विब्रुवन अगर सभासदों के अनुसार वो न बोले, उनकी बात का अनुमोदन न करे तब भी और बोले तब भी वो अज्ञ आदमी अज्ञ न रह के लगता है। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है सभा में और कोई मूर्ख आदमी चला गया, अगर सभा में अनुकूल बोलेगा इन सबके अनुकूल बोलेगा तो नरक में जाएगा, और यदि विपरीत बोलेगा तो सबके विरोध का पात्र बनेगा। अतः प्राज्ञ बुद्धिमान आदमी ऐसी सभा में नहीं जाता, नहीं प्रवेश करना चाहिए। अगर प्रवेश कर भी गया कोई तो वहाँ एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहिए। कुछ स्त्रियों ने कहा ये सभा से नहीं निकलना चाहती थी क्योंकि कृष्ण के और श्री बलराम के सौंदर्य को और तेज को देखने में आसक्त थी, और कभी कभी आशा हो जाती थी कि कृष्ण हो सकता है मारे क्योंकि बच्चे थे, फिर भी कभी कभी उठाकर पटक देते थे चारों से, जैसे वो मारते थोड़ा से भी मारते, पर इनके मारने से उन लोगों को घाव लगता होगा ये अनुमान स्त्रियाँ नहीं करती, पर फिर भी कहने लगे नहीं नहीं रुको जाओ मत, बलगता शत्रु न भीतर कृष्ण सुपद नाम बुझा लिखता सोमवार एकदम पद्म को सुना। देखो देखो कृष्ण का बदनाम मुगम का बदन कमल कितना सुंदर है। व्यक्ति परेशान है इस विषम परिस्थिति में फंस करके ये विजय चाहते हैं, विजय के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं और शत्रु के चारों तरफ पैसा बदल रहे हैं। देखो विक्षता तो जरा देखो पैसा बदल रहे हैं, चारों को पटकने के लिए पराजित करने के लिए इतना परिश्रम हुआ है कि परिश्रम के कारण उनके बदन पर पसीने की बूंदे छा गई है। इतना सुंदर मुख लग रहा है, इतना लगता है जैसे नील कमल के कोष में जल बिंदु बिंदु पड़े हैं, जब बिंदुओं के पड़ने से जैसे कमल सुंदर होता है ऐसे मुख सुंदर लग रहा है। और फिर मैं पश्चिम आसाम गलत और जरा उधर ध्यान दो क्यों नहीं देखते हो श्री राम के मुख को। देखो बलराम का मुख मुस्तिक के प्रति अमर से भरा हुआ है और उनका मुख गोरा है लेकिन आंखें लाल हो गई क्रोध तो मुस्तिक के प्रति बहुत क्रोध किए हैं। आवेश हंसी का आवेश रोक नहीं पाते बलराम के हंस भी रहे हैं और लड़ रहे हैं मुश्किल के साथ हंसी आ रही है क्रोध के कारण। तो क्रोध और परिश्रम और हंसी एक साथ देख रहे हैं। श्री बलराम जी हंस रहे थे अपनी हंसी को दबा रहे थे क्योंकि ये कृष्ण को देख रहे थे इतने छोटे से शत्रु के साथ इस तरह पहलवानी कर रहे हैं जीतने का प्रयास कर रहे हैं इसे हंसी आ रही थी और अपने पर भी हंसी आ रही थी। एक फूंक से सारा ब्रह्मांड जल जाता है और इस मुश्किल के साथ मुझे युद्ध करना पड़ता है। उनको हंसी आ रही थी ये मथुरा की स्त्रियाँ कृष्ण बलराम को इस तरह से देख रही थी तो उनको कभी कभी आशा हो जाती है कि ये मारेंगे अतः बाहर मत जाओ दूध रूख हो देखो यहाँ। एक सत्य घटना हुई हम जहाँ रहते थे वहाँ देहरादून में तो बहुत से विद्यार्थी थे पाकिस्तान के साथ मैच चल रहा था वो टीवी देख रहे थे। एक शुक्ला जी थे हम लोगों के साथ तो ये भी देखने जाते थे। जब भारत हारने की दशा में होता था तब ये कहते थे अब नहीं देखते उस करके चल जाते। जब पाकिस्तान हारने को होता था हारने हम हो गया तो उत्साह से जा करके देखने लगते मथुरा की स्त्रियाँ परम स्नेह से देख रही हैं कृष्ण बलराम को उनका परिश्रम देख करके ये सोचते हैं कि हार जाएंगे। ये सभा से निकलना चाहते हैं एक कवि की युक्ति है हरिश्री जी की तो जानती हैं मथुरा की स्त्रियाँ कि परम विदुषी हैं सर्वे स्व अयम अनंत अनंत शक्ति का बड़ा निष्ठा प्रभाव आते हैं। ये जानती हैं कि श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं और इनमें अनंत शक्ति है इनके प्रभाव को कोई दबा नहीं सकता है सबके प्रभु हैं। लीला के लिए अवतार लिए हैं अपना श्री विग्रह प्रकट किए हैं लीला विग्रहवान की पति पदल संक्षिप्त जैसा पहले अपने से सब समय इसका वर्णन करते रहते थे कि नारायण के अंश हैं, वो भगवान हैं, दोनों अवतार लिया है। और सुनते थे, बारंबार सुनते थे, सुमन के अति मोह प्रदर्शित व्रत में रहकर भगवान कृष्ण क्या क्या लीला किए, इंद्र का मार मान मर्दन किए, गोवर्धन पर्वत उठाए, प्रेरणा वर्ष पूतना बकासुर आदि का वध किए, ये सब सुनते थे विद्वानों के मुख से। और परम वृद्ध सिंह स्त्रियों के मुख से सुनते थे भाई नीति, फिर भी जब एकदम प्राप्त हृदय सुदृढ़ मबला पर ये युद्ध जब होने लगा पहलवानों के साथ, तो इनको बहुत खेद हो रहा है, बहुत भय हो गया कृष्ण वरदान का अनिष्ट क्या सुनता पर मोह पार्श्व के है। निश्चित ये स्नेह का बंधन, मोह का बंधन दृढ़ है। सब जानते हैं कि परमेश्वर हैं, भगवान हैं, अनंत शक्ति है, अनंत स्वभाव है, पर फिर भी स्नेह बस छुट्टी ही कि हाथ न जाए दोनों तरफ से, स्नेह की जोड़ी में बंधी है। वहां पर कुछ स्त्रियां राजा कंस की निंदा करने लगी और कुछ रंग क्रीड़ा को इस आयोजन को इस उत्सव को ठिकाने लगी। भूकंप तत्व मिलिंद मिलिंद लपड़े रंगन तत्व तत्व कोई कोई राजा कंस की निंदा करने लगी कि राजा ठीक नहीं है, इस प्रकार का आयोजन करना है। तो उस रंग क्रीड़ा को उसी के आयोजन को धिकारने लगे। मल्लन के पिक्चर मेन वेश में हो गया और कोई स्त्रियाँ कहने लगी अरे पहलवान क्या है, ये पहलवान पत्थर का हृदय बनाया है, इनका छाती का कलेजा पत्थर का बना है, कृष्ण बलराम को मारने में इनको थोड़ी दया नहीं आ रही है, हाथ नमोड़ने में या सिर पर मारने में छाती पर मारने में इनको दया नहीं आ रही है, इनका हृदय में कुछ पत्थर का दुष्कर्म विधि चोट हो गया। और किसी किसी स्त्री ने कहा कि निश्चित विधाता परम दुष्ट है, जो ब्रह्मा जो विधाता एक दूसरे का प्रयोग लिखता है उसका सोच बहुत दुष्ट है। उसने ऐसा लिखा कृष्ण के साथ चरण का युद्ध होगा तो विधाता ठीक नहीं है, दुष्ट है। इस प्रकार महान जीती हुई समस्त स्त्रियां जो उस युद्ध क्रीड़ा में थी, उस मल्ल क्रीड़ा में थी, इस अयोग्य युद्ध को देखकर बहुत व्यसित हो गए, व्यास हो गए और शीर्षा की तासीर गिरा। उनको तो भय हो ही गया और भयवश कृष्ण बलराम को आशीर्वाद के वचन बोलने लगे, समस्त देवताओं को मनाने लगे। हे भगवान नारायण, हे विष्णु, आप तो नहीं होने वाली घटना निकाल देते हैं, अगर घटना पति ऐसी आपकी शक्ति है, बच्चों में ऐसा बल दीजिए इन पहलवानों से भरा था। फिर भगवान भूतेश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर से, हे शंकर भगवान, यदि आप हमारी पूजा से प्रसन्न हैं तो इस पूजा का फल यह हो कि कृष्ण बलराम जीत जाए। फिर गणपति जी से प्रार्थना करते हैं, मैं गणपति जी आज के लिए आपकी पूजा के लिए इस बलराम को जिता दीजिए, मैं बस बहुत डर गई थी और आशीर्वाद दे रहे ये दोनों जीवित रहे दीर्घ काल तक और अपने शत्रुओं को पराजित कर गए। हमने जो भी पुण्य किया है उस पुण्य के प्रभाव से ये दोनों विजयी हुए। इस प्रकार आशीर्वाद दे रहे थे, देवताओं से प्रार्थना की, फिर शुद्ध भगवान से माता दुर्गा जी से प्रार्थना करना। इस प्रकार ये स्त्रियां बात करे कि श्री भगवान की अध्ययन घर गया, भगवान जानते थे कि मैं इनको मारूंगा, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के दुख को उत्साह नहीं था। स्त्रियों की बात को सुनकर देवकी बसदेव जी बैठे थे उसकी सभा में, ये डर गए क्योंकि अपने बच्चों के बल को नहीं जानते। इस युद्ध को देखने के लिए कौन से सारा जो उसे देवकी बसदेव को बुलाया था, ये सोचकर कि ये लोग अपने पुत्रों का मरण देखेंगे अपने आँख से, तो ये बहुत डर गए क्योंकि ये उनके बल को नहीं जानते। मतलब कि स्त्रियों का भय युक्त वचन भय गिरा, भय युक्त वचन भगवान ने सुना, उनके हृदय में दया आ गई। अब उन्होंने संकल्प किया कि अब उसके साथ ज्यादा पीड़ा नहीं करेंगे और उसको मारेंगे। स्त्रियों का भय मिथ्या था, लेकिन उस भय को भी भगवान सहन नहीं किया। स्त्रियां आपस में कहने लगी, हम लोग पूर्ण नहीं थे, वास्तविक पूर्ण किया है गोपियों ने, वो श्री कृष्ण को आनंद के अवसर पर देखा करते थे, जब वे बहुत प्रसन्न रहते हैं वृंदावन में, हम ऐसे अवसर पर देख रहे हैं कि जब ये दोनों चिंता में हैं, इनको लड़ाया जा रहा है बड़े 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 पहलवानों से, कितना परेशान हो रहे हैं। गोपियाँ आनंद के समय इनको देखती थी, जगह अनुग्रह आते हरि सखी जो हिंदू धन है ब्रज बहुत की भूमि ना पूर्णिया वक्त ब्रज हुए ब्रज दुनिया धन है ब्रज भूमि मतलब नंद गांव का क्षेत्र बरसाने का क्षेत्र वृंदावन सबसे खराब जगह मथुरा है जहाँ इस पुरुष को कृष्ण को पराभव देखना पड़ रहा है इतना परेशानी हो रही है तो यह स्थान बहुत बुरा है। सबसे अच्छा है वृंदावन जहाँ ये पुरुष प्रसंग घूमते हैं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा करते हैं। गोप रूप में ये अपने सर्व को छिपा करके वहाँ घूमते रहते हैं लीला करते हैं। गौओं को चराने के लिए बलराम जी के साथ है अपनी सेना के लोगों के साथ वन में जाते हैं और आनंद में रहते हैं हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं। हम वैसे आनंद के साथ किसी को नहीं देख पाए गोपियों ने ऐसा कौन सा बड़ा शुभ कर्म किया था जो उनके मुख को देखती रहती है। जो लावण्य का सार है असंपूर्ण हुआ श्याम सुंदर के रूप के समान दूसरा कोई रूप नहीं है और सुबह तक हो ही कह अनन्य सिंह है और इनका रूप है उनका सौंदर्य अनन्य सिद्ध है स्वतः सिद्ध है श्रृंगार करने से सुंदर हो बच्चा है ऐसी बात नहीं है वो अपने आप सुंदर है। गोपियाँ अपने आँखों से उनका रूप सुधा पीती रहती हैं हमेशा और वो धन्य है। श्याम सुंदर पहले हजूर पर स्वरूप जश का श्री का और ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है आश्रय और श्री गोपियाँ सब समय कृष्ण का गान करती हैं गीत गाते रहती हैं या दो हमें वहन में मथनों को लेकर अपने जन सुना दे उसको सुनना सुना गायन की चरण मंगत दोष करें कृष्ण में उनका चित्त आसक्त रहता है गोपियों का दोहन गाय जोड़ते समय गरी मरते समय और हमें धान कूटते समय मक्खन गरी मरते समय ले पर घर लिखते समय या अपने शरीर में अंगराग लगाते समय झूला झूलते समय या बच्चों पर झूला झूलाते समय भक्ति जब होते हैं तो उनको चुप कराते समय नाम करते समय घरों को शुद्ध करते समय लक्ष्य करते समय सब समय एनम गायन की कृष्ण को दिशा में जाती रहती है और कृष्ण के बारे में जाती है तो उनके आंखों में हंसी गायन चाहिए हमेशा तो नाम गुजरता है धन नहीं व्रत की स्त्री और भाग्य खुलता है मथुरा की स्त्रियों का हम लोगों को देखने को मिला लेकिन जब ये प्रसन्न नहीं है वे चिंता में है युद्ध में फंसे हैं ऐसे समय पर हम देखते हैं प्रातर प्रजात ग्रत आविष्कार आविष्कार के सहाय ये प्रातः काल ब्रज से निकलते हैं वन में जाने के लिए और अविस्पष्ट सहायक और शाम होने पर वन से फिर ब्रज में आ जाते हैं दोनों समय सवेरे और शाम रोटियाँ छिटी छिटे बुखार बिंद को देखती हैं अपने अपने घरों से निकल जाते हैं बांसुरी की ध्वनि सुनकर सामने ध्यान अपने घर के बाहर होकर गली में श्री कृष्ण का प्रसन्न करती है श्री कृष्ण भी हंसते हुए उन पर शिकायत करते हैं छोटिया धन है विशिष्ट ब्रज में अच्छे आनंद रहते हैं नाचते रहते हैं जाते रहते हैं मास्टी बजाते रहते हैं गाय चराना भी एक आनंद की लीला है जाने में आने में गोपियाँ उनको देखती रहती हैं हम तो ऐसे अनवसर देख रही हैं जबकि ये दुख में है परिश्रम में है इस प्रकार की जब बातें कर रही थी और भयभीत थी तब बृहस्पत भगवान कृष्ण शत्रु को मारने का संकल्प कर लिया शत्रुभंति मनस्तत्व सनातन को स्वामी प्राप्त करते हैं किसका शत्रु भगवान की कोई शत्रु नहीं है उन स्त्रियों का शत्रु जो कृष्ण को दुख दे रहे हैं उनके शत्रु को मारने की इच्छा भगवान की कानून को जैसे चारूर और मुस्टिक के कृष्ण के युद्ध का वर्णन हो रहा था इसी प्रकार मुस्टिक और श्री बलराम के युद्ध का वर्णन समझ तैसे निरुद्धिर विधय और चुके अच्युत और ईश्वर चारूर इसका युद्ध कर रहे थे धातु के था अन्य जैसे बल रहे थे सफाई बल मुश्किल था उसी प्रकार से बलराम और मुश्किल जब भगवान ने मारने का मारने की इच्छा किया चारों को तो अपना फर्स्ट कलामा चाहे इसको कड़ा कर दिया, मुस्टिका मारना हाथ से मारते थे तो भगवत भक्त निष्पाप भद्र निष्पेष मिश्र भगवान जब नाम मारने लगे चारूर को देह पर तो ऐसा लगता था कि जैसे वज्र तो एक वार पर वज्र निष्पेष मिश्र वज्राघात से भी अधिक कठोर लगने लगा। बाहर से देखने में वही कोमल हाथ है कोमल अंगुलियाँ हैं लेकिन जब मारने लगे तो वज्र की कड़कड़ाहट के समान आवाज और निश्चित पहले तो माता का चालू भी और कुछ बल लेकिन इतनी आवाज नहीं होती थी जैसे वज्रपात होता है बिजली कड़कती है ऐसे आवाज होने लगी है। और मारने से चारूरो भज्यमान आ गया और चारूर का अंग जिस अंग पर भी मुस्टिका मारते थे उन पर टिकने लगा भज्यमान आ गया। शरीर का अंग टिकने लगा मुह ग्लानी हुआ ऐसे अब समझ में आने लगा कि मैं तो बड़ा गलत किया। जहाँ मारे वहाँ वज्र ही लग रहा है तो शरीर में घाव हो जाता था नस ढीली पड़ गई शरीर टूटने लगा तो सारा शरीर नस से मरा हुआ है हाथ टूट गया पैर टूट गया पेट में घाव छाती में घाव भगवान है ना मारे तो जब इच्छा हो गई तो उसको मारना चाहिए तो मारना भगवत व्रत दुष्ट पात्र व्रत दुष्ट भगवान के अंगों से चारूर का भज्य माना गया था। शरीर का आघात हो गया मुगुल ग्लानी वाला था सब लगा के सब दम निकल जाएगा ग्लानी में पड़ गया अरे बाप रे मैं इसको लड़का समझाई गुलामी हुई था कि अब वो कंस को गाली देने लगा मन में मारी गाली तो प्रकट दे नहीं सकता था लेकिन मन में कुछ भी गाली दे तो क्या सुन अब वो सोचने लगा कि आए बाप अगर मैं ऐसा जानता इतना खतरनाक लड़का तो मैं युद्ध का प्रस्ताव नहीं रखता मैं मना कर रहा था कि हम लोग कमजोर हैं आपके साथ हमारा युद्ध ठीक नहीं है हम लोग बालक हैं मैं कहा कि नहीं तुम भगवानों बलवान हो बलवान कहकर फिर भी गया मेरे देश से जीत गए बार बार मन में तुलारी हो रही थी और फिर जान गया कि हारूंगा अब हारूंगा क्या है अब जीवन से भी यहाँ ढूंढना है तो वो सोचा कि अब तो हार ही रहा हूँ बाज पक्षी के समान उछला और अपने दोनों हाथ को आसान हो गया। एक निष्ठिका से उतना जोर नहीं लगेगा, दोनों हाथ एक में बांधा और छल करके आघात किया, उसको तो खाते में दोनों हाथ से मारा बहुत जोर से उछल करके, तो उसके दोनों हाथ से दोनों निष्ठिका लगने पर कृष्ण जब किए जैसे उन्हें लगा जैसे हाथी को फूल से मारा गया। हाथी पर कोई फूल फेंकने को क्या है, चालू चालू रे मारा, लेकिन भगवान से विकसित नहीं है। यह नहीं जैसे जो फिर मारते थे तो हमेशा आया किसी को, जब वो मारे तो बिल्कुल बिस्कुट नहीं होते, हंसते रहे प्रेम से खड़े रह गए। आह वो नहीं किए, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे हाथी पर फूल मारा गया। माला हट युवा द्वीप द्वीप हाथी को कहते हैं जो दो बार पिए वो द्वीप है, दो बार पानी पीता है तो अच्छे से उठाता है और दूसरे में निकालता है, उसको द्वीप कहते हैं। जैसे द्वीप माला होता जैसे नकली को माला से मारा जाए तो उसको कोई चोट का अनुभव नहीं होता, किसी प्रकार भगवान किसी को कोई चोट नहीं होती। बहुत क्रोध करके मारा भगवंतम वासुदेव, भगवान वसुदेव नंदन ना क्रोध प्रहार प्रहार माला हटे तय हुए। जब मारा तो भगवान उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथ पकड़ लिए और दोनों हाथ से घुमाना चालू किया। बीच में थोड़ा सर्कस भी हो रहा था, घुमाने लगे और इतना जोर से घुमाए कि घुमाने में ही वो मर गया। उसके बाद पृथ्वी पर पटके और भया मां धूप सरसा छेड़ दिए, वो तो ऊपर ही मर गया था। उसके बाद पृथ्वी पर अखाड़ा में वो भया मां से पटके पूरा फैल करके गिरा, लंबा था। तो सिद्धेव स्वामी कह रहे जैसे इंद्र ध्वज दिया जाता है अंधेर से, इंद्र की पूजा के लिए घंटा बहुत बड़ा गाड़ा जाता है, जैसा घंटा गिर जाता है इंद्र ध्वज हुआ पकड़ दिया जाता है अंधेर से, वैसे वो भगवान को मारने से दूर करके मर गया। घंटा सपना चढ़ाने की ऊपर पर बाल बिखर गया था और हाथ ऊपर था, ऐसे भगवान ने अखाड़ा में पटक दिया, लंबा पसर गया घंटा जैसा लंबा। किसी प्रकार से मुस्टिक मारा श्री बलराम जी को, मारा अपनी मुस्टिका से बलराम का, लेकिन बलराम के करें वो विस्तृत नहीं हुआ जैसे कृष्ण विस्तृत नहीं हुआ। उसके बलराम के बहुत बलवान हैं और उन्होंने बाएं हाथ के तमाचा से मारा मुश्किल से, एक तमाचा खींच करके मारा बस और मुख से खून उगलने लगा, गमन करने लगा, खुद गमन साथ बहुत ज्यादा खून निकलने लगा, चक्कर आ गया उसको, एक तमाचा लगते हैं खून फेंक करके फिर पृथ्वी पर गिर पाया, मर गया। बोल श्री बलराम जी की, माता देवकी की जय, श्री बसदेव जी की जय, नंद महाराज की जय। इसके बाद श्री बलराम जी से लड़ने के लिए कूच आ गया, मुश्किल के बाद कूच, उसको भी श्री बलराम जी ने खेल खेल में अवज्ञा पूर्वक बाएं हाथ से मार दिया, उसको टमाटर से मारा था मुश्किल को और इसको मुक्का से मार दिया बाएं हाथ से मुक्का। और जब कूट भी मर गया तब सौ चौसल जो बैठे थे वे गायक खड़े हुए और ये सोचे कि हम कृष्ण को पकड़ दें, एक एक पैर पकड़ कर दें, दोनों आए और कृष्ण के चरण को पकड़ कर उठाना चाहते, पकड़ना चाहते, तो हे वही समस्त दूल्हा दुल्हन को तो सरल आया पैर पकड़ने पर तो भगवान ने मारा उसको, उसका पैर फट गया, दीघा मस्तक टूट करके गिरा, उसका मस्तक अलग हो गया और कौशल कौशल को भगवान ने ऐसे पैर से मारा कि वो दो खंड में हो गया, सौ कौशल और चाणूर को कृष्ण ने मारा और मुष्टि पर खूट तो श्री बलराम ने पांचों पहलवान मर गए। जब पांचों मर गए तो सारा उत्सव इसी के लिए था, पहलवानी के लिए। और जो पहलवान बैठे थे बहुत से लाइन में, वे जब देखे कि ये पांच मेन पहलवान मारे गए तब धीरे धीरे युद्ध करते सब भाग, जो पहलवानी करने के लिए तैयार थे और शायद कंस कहता कि तुम ये थे तुम सुन दे रहा हो, लेकिन कंस की कुछ कहानी से पहले लोग धीरे धीरे कोई प्रसाद का बहाना है कहते हैं जैसे तैसे उसके भाग। शेरशाह प्रभु जरूर मरला, सभी प्राण बचाने के फेर में से कले घाट
थे।
जब सब भाग गए तब भगवान को कोई पहलवान मिले नहीं। अब अपने सखाओं को खींच खींच करके खड़ा मिला है, जो बैठे थे कुर्सियों पर उनको उठा कर खींच करके लाए अखाड़ा में, उनके साथ युद्ध करने लगे। रोज करते ही थे वृंदावन में, तो उनके साथ कुश्ती करने लगे। उस अवसर पर पहलवानों को उत्साहित करने के लिए बहुत वादे ठीक किए गए। सरकार के द्वारा यह आयोजन था, राजा के द्वारा, तो बाजा खूब सजाए गए थे बजाने के लिए। वो जो बजाने वाले थे वे सब इस बात को भूल गए कि नहीं बजाना चाहिए, शोक का समय है, तो जोर जोर से बजाने लगे। बलराम अपने सखाओं के साथ लड़ रहे हैं, जोर जोर से बाजा बजाने लगे, हर्ष से नाचने लगे। तो श्री कृष्ण और बलराम भी नाचने लगे उन बाजा के साथ, उन वाद्यों के साथ नाचने लगे, अपने नुपुर उसी तारों के ऊपर बजाने लगे। नुपुर बजा बजा करके नाचने लगे, खूब नाच होने लगा, बाजा बजने लगा। जना प्रजय हिशू स्थल पर करुणा राम कृष्ण और बलराम के कर्म से सभी लोग प्रसन्न थे, सर्वे जना। एक कंस को छोड़कर सभी प्रसन्न थे, रीते कंस हैं और जो ब्राह्मण के सज्जन थे लोग मजे कहने साधु साधु थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब बोल रहे थे। जैसे हरेक पहलवानों के मर जाने से वज्रांग कंस बंद किया बाजा से, हर बंद करो ये सात तक क्या इसी के लिए बाजा ठीक किया गया, बंद करो बाजा। वो तो बजाते जा रहे थे आनंद में थे, बंद करा दो। मन हुए तब सात शब्दों बोला, सारे तो दुर्ग दुर्ग तो वसुधरा प्रयोग किया, वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को यहाँ से निकालो कर बाहर करो, निसारे तो निशारे तो मैं निकालो। अरे कौन अब साहस करेगा निकालने, लेकिन बोल रहा है इनको निकालो यहाँ से, मथुरा से बाहर कर दो, जो रंग भूमि से नहीं मथुरा से बाहर निकालो। ऐसे वो बक रहा है दूर दूर तक। आए थे कुश्ती करने के लिए, तमाशा दिखाने के लिए, मर्डर कर दिए। ऐसे बोल रहा है, दूर देवता कह रहा है, इनका बहुत खराब आचरण है। मैं आकर के पहलवानों का वध कर दिया, इसलिए इनको यहाँ से बाहर कर। चाहे दृष्टि सुन रहा है, चाहे सुन रहा है, कौन बाहर कर रहा है, बाकी पहलवान से सब भाग गया। और सारी जनता खुश थी। वसुदेव आत्मदेव, ये वसुदेव के दोनों लड़के हैं और वसुदेव हरामी है, वो बड़ा झूठा आदमी है। नंद की लड़की से अपनी लड़की को बदल दिया। वसुदेव अस्तु दुर्मेधा, वसुदेव दूषित मेधा वाला है। दूसरे की लड़की दिखा दिया हमको, लड़का को छुपा दिया। सप्तम है, सप्तम का अर्थ है जिसके समान दुष्ट कोई नहीं है। सबसे बड़ा दुष्ट ये झूठ बोलने वाला है। कहा था कि मैं पुत्र को सोच दूंगा, पुत्र को गोकुल पहुंचा रहा है, इसलिए हन्यता आशु वसुदेव का वध करो, इसको मार दो, जल्दी मार दो। इसका सरस्वत अर्थ है सरस्वती जी कंस के दिल पर होकर बोलते हैं, वो अर्थ तीसरा है। निसारे तो दुर्वित वसुदेव के दोनों पुत्र दुर्गम चरित्र वाले हैं, इनको निसार है, इनको सार के रूप में बना दो, इनको सर्वश्रेष्ठ बना दो। निसार है वसुदेव दूर में न है, इसका है कि वसुदेव की बुद्धि अपार है, दुर्गम है, या सप्तम है जिसके समान सप्तम संत कोई नहीं है, वो है असत्तम। धनम हरत गोपा है और इन अहिरों का धन छीन लो, गोपों का धन छीन लो। इसका सरसों का गोपों का धन कृष्ण है, इसका कृष्ण को हर लो, कृष्ण को मत जाने दो मथुरा से। नंदन बहनीत दुर्मती और दुर्मती नंद को बांध लो। कितना दुर्मती है हमारे शत्रु को पाला पोसा कृष्ण बलराम को अपने घर में। दुर्मती का ही अर्थ दुर्गम मति, दुष्टेशु मति कृपा लक्ष्मण जैसे। दुष्टों पर भी नंद महाराज दया करते हैं, इसलिए दुर्मती है। बदली का इसको लोहे की रस्सी से बांध लो, हथकड़ी नहीं डालो, कोई सुन नहीं रहा था पर वैसे ही बक रहा था। उग्रसेन कहने भर के लिए मेरा बाप है, उनके पर पक्ष है, ये शत्रु के पक्ष में रहता है। पर का परमेश्वर, परमेश्वर कृष्ण के पक्ष में रहता है, कृष्ण का भक्त है, इसलिए इसको भी मारो। इस प्रकार से विकसन कर रहा था, कंस बक रहा था उनके आसन से, तो भगवान कुपित हो गए। कुपित हुए क्योंकि नंद महाराज की निंदा किया, वसुदेव जी की निंदा किया, ऐसे कुपित हो गए और बिल्कुल फुर्तीले हैं कृष्ण, हलता से हलता है, ऊपर उछल करके मंच पर चल गए पक्षी की तरह, कुर्सी से ऊपर चढ़ गए। तो कृष्ण को अपने पास आते देख तो कंस बड़ा वीर था, वो भी तलवार उठा लिया और झाड़ बहुत सेम गति से बाघ पक्षी के समान सेम गति से तलवार ऐसे भागने लगा और ढाल भी कृष्ण कहीं हमको पकड़ न सके। और देख लिया गया तो हाथ से मार दिया चारों को, सब को सब को, तो हमको न मारे तो तलवार वहाँ लगा। लेकिन भगवान गए ऊपर उसके तलवार को एक हाथ से ऐसे झटका दिए, ढाल पकड़ दिए। इसके बाद उसके मस्तक पर हाथ दिए, उसके शिखा पकड़ने के लिए बाल केस केस पकड़ने के लिए, तो मुकुट गिर गया। इसके कारण से मुकुट गिर गया, भगवान ने केस पकड़ लिया और केस पकड़ कर उतने ऊँचे सिंहासन से खाड़ा में पकड़ दिया। खाड़ा में पकड़ दिया और फिर वहीं ऊपर से ही उसके ऊपर कूद पड़े। समस्त ब्रह्मांड का भार अपने भीतर लेकर के विश्व के आश्रय में से भगवान कूदे। भगवान के उस भार से कितने जो मर गया। भगवान कूदने मात्र से इसके बाद उसके मरे हुए शरीर को भगवान अखाड़ा में खींच खींच करके दिखाने लगे। मरे हुए शरीर को खींच रहे हैं, भक्त कहते हैं क्यों खींच रहे हैं, कि भगवान ने सोचा कि इतना पापी है कि अपने हाथ से मैं नहीं खींच रहा तो इसका उद्धार नहीं हो, अपने हाथ से खींच रहे हैं। तो कम से खाते समय, पीते समय, चलते समय, बैठते समय, सोते समय, सब समय भय के कारण कृष्ण का चिंतन कर रहा, भगवान विष्णु का चिंतन कर रहा, इसलिए उसको सारूप्य मुक्ति मिली। जो रूप भगवान का है वही रूप उसको मिला। भगवान इसके बाद सारा गेहूँ गए वहाँ जा करके थे, सेन जी को छुड़ाए, अपनी नाना को और अपने हाथ से मुकुट बांधा। उससे पहले देव की बसदेव जी के पास माँ की माँ के पास उनको कारागृह इस लीला को मैं कल कहूँगा।
Thank you.